अध्याय तीन, हम पुरबिया औरतें और हमारा स्त्री विमर्श। वैयक्तिक यातनाओं का सामाजिक संदर्भन उनके प्रतिकार का एक आजमाया हुआ अस्त्र है। तकलीफ खतरनाक चीज होती है, उससे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह अनंत काल तक अंधेरे कोनों में मुंह लपेटे पड़ी रहेगी। न्यूटन ने गति का जो तीसरा नियम दिया, वह प्रगति पर भी उतना ही लागू है जितना सामान्य गति पर। आदमी का स्प्रिंग तत्व उसे एक सीमा के बाद दबने नहीं देता, और जितनी जोर से स्प्रिंग दबता है उतनी ही जोर से उछलता भी है। पर स्त्रीवाद को उछल कूद के निरे प्रतिक्रियावाद से जोड़कर देखना भी एक गहन राजनीतिक षड्यंत्र है, जिससे हम आज तक उबर नहीं पाए। जिन मुद्दों पर बहुत बहस हो चुकी हो और जिनके बारे में हर व्यक्ति एक अलग राय रखता हो, उनके बारे में नए सिरे से बात करना आसान नहीं होता। ऋग्वेद के आचार्य यह समझते होंगे, तभी उन्होंने मूल क्या है बताने से पहले मूल क्या नहीं है बताने की खूबसूरत परंपरा शुरू की। क्या नहीं था ही क्या था तक पहुंचने की राह बना। नासद्दान सिन्नो सदासित दाने नासिद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरीह कुहकस्य शर्मनभम किसामिद दहनम गंभीरस आदि। कोष्टक में असत नहीं था, सत भी नहीं था, रज नहीं था, न उसके पार का आकाश था। क्या ऊंचा और क्या नीचा था, गहन गंभीर पानी कहाँ था और ब्रह्मांड कहाँ था। मृत्यु नहीं थी, अमरत्व भी नहीं था, न तो रात का कोई चिन्ह था न दिन का। अपनी आंतरिक शक्ति से परमेश्वर ने वायुविहीन निःश्वास लिया, उससे परे और कुछ भी नहीं था आदि। कोष्टक बन इसी सृष्टि सूक्त से प्रेरणा लेकर स्त्री आंदोलन की मूल मान्यताएं और आदर्श क्या हैं पर आने के पहले उसके बारे में जो बद्धमूल भ्रांतियां फैली हैं या फैलाई गई हैं, मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगी। यह क्या है कि पहले यह क्या नहीं है चुनने के पहले फटकना, यही हमें सिखाया भी तो गया है। इस क्रम में सबसे पहले यह कि स्त्री आंदोलन प्रतिशोध पीड़ित नहीं है। ड्रैकुला जिन स्त्रियों का खून पीता था, वे स्त्रियाँ ड्रैकुला बनती थीं तो वे मूल ड्रैकुला से ज़्यादा खूंखार हो जाती थी। स्त्री की अगाध शक्ति के प्रति पुरुषों का यह प्रच्छन्न भय ही माया महाठगनी आदि सारे गढ़ंत रस्ता रहा है। पर अब समय आ गया है कि अच्छी तरह समझ लिया जाए स्त्री आंदोलन के सार्थक मानवियाँ हैं, मादा ड्रैकुलाएँ नहीं। इन्हें न्याय चाहिए, पर वे जानती हैं कि अन्याय का प्रतिकार अन्याय नहीं है। एक दमन चक्र का जवाब दूसरा दमन चक्र नहीं। स्त्री आंदोलन की समर्थक स्त्रियां पुरुष नहीं बनना चाहती। ब्रा बर्निंग की एकाध आवेशमूलक घटनाओं के साक्ष्य से यह नहीं समझना चाहिए कि ये स्त्रियां अपनी विशिष्ट दैहिक मानसिक और भाषिक संरचना पर गर्व नहीं करती। जो प्राकृतिक विशिष्टताएं हैं शर्मनाक वे नहीं, शर्मनाक आरोपित सामाजिक मानदंड हैं जो दोहरे हैं और जिन पर पुनर्विचार होना ही चाहिए ताकि विकास के अवसर सबको समान मिल सके। स्त्री और पुरुष की लड़ाई का व्याकरण सामंतों और असामियों, पूंजीपतियों और मजदूरों, औपनिवेशिक ताकतों और शोषितों के बीच की लड़ाई के व्याकरण से अलग है। स्त्री और पुरुष के बीच की लड़ाई दो वर्गों, दो नस्लों, दो जातियों, दो दलों, दो राष्ट्रों के बीच की लड़ाइयों से तुलनीय नहीं। संपन्न और विपन्न, ऊंच और नीच, शासक और शासित, गोरे और काले के बीच जो जंग छिड़ी है उनमें प्रतिपक्षियों के हित निकाय अलग अलग है। इसलिए हार और जीत वहाँ एक अलग ही मायने रखती है। लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच की लड़ाई में दो पीढ़ियों के बीच की लड़ाई की तरह हित निकाय अलग अलग नहीं होते। दोनों का हित निकाय एक ही होता है, परिवार। यह अच्छा है कि बुरा मैं नहीं जानती, पर मानवता कितनी लंबी यात्रा के बावजूद कम से कम तीसरी दुनिया के देशों में सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई अभी तक स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उनका परिवार ही है, जिसमें कम से कम उनके बच्चे तो शामिल हैं ही। उनके हित निकाय से बहुत अलग उनका कोई स्वतंत्र हित निकाय हो ऐसा प्रायः नहीं देखा जाता। इसलिए हार क्या और जीत क्या, एक के मान में दूसरे का मान समझना दोनों के हित में है, क्योंकि इससे जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण की सृष्टि होती है उसका सबसे बड़ा लाभ उनके बच्चों को होता है, जो दोनों की अमूल्य निधि है। कुल मिलाकर पीढ़ियों के विद्वेष की तरह यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सत्ता का हस्तांतरण उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं जितना दृष्टियों और व्यक्तियों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सामंजस्य और अधिकारों कर्तव्यों का सम्यक आवंटन। स्त्री आंदोलन पितृसत्तात्मक समाज में पल रहे स्त्री संबंधी पूर्वग्रहों से पुरुषों की क्रमिक मुक्ति को असंभव नहीं मानता। दोषी पुरुष नहीं वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरुषों को लगातार एक ही पाठ पढ़ाती है कि स्त्रियां उनसे हीनतर हैं, उनके भोग का साधन मात्र। आंदोलन की सार्थकता इसमें है कि वहां वहां उंगली रखे, जहां जहां मानदंड दोहरे हैं, विरूपण प्रक्षेपण विलोपन के तिहरे षड्यंत्र स्त्री के खिलाफ लगातार सक्रिय हैं, जिनसे निस्तार मिलना ही चाहिए और सारा संघर्ष इसी बात का है। स्त्री आंदोलन धनी महिलाओं का कोरा वाक विलास और न्यूज में बने रहने की उनकी साजिश नहीं है। जमीनी स्तर पर इसका विस्तार है और हर वर्ग हर नस्ल तक सार्वभौम भगनीवाद का मूल मंत्र पहुंचाने में असफल भी हुआ है, क्योंकि वर्ग नस्ल या देश कोई भी हो, स्त्रियों की भावनात्मक मनोवैज्ञानिक नैतिक भाषिक और अस्मिता संबंधी समस्याएं प्रायः एक सी हैं, जिन्हें फ्रेंच मनोवैज्ञानिकों ने बखूबी समझा है। स्त्रियों का यह आपसी सखी भाव ही सामान्य संकटों की उस उदात्त साझेदारी का नाम है जिसे स्त्री आंदोलन कहते हैं, जिसकी मूल प्रवृत्तियां ये हैं। पहला, व्यक्ति सत्य ही समष्टि सत्य है, इसलिए पर्सनल इज पॉलिटिकल। दूसरा, समता स्वतंत्रता और भाईचारा, ये सारे प्रजातांत्रिक मूल्य स्त्रियों की दृष्टि से नए मूल्यांकन की अपेक्षा रखते हैं। तीसरा, सारे आर्ष ग्रंथ क्लासिक्स रीति रिवाज शास्त्रीय और लोक कला के स्तंभ साहित्य दर्शन इतिहास मिथक अर्थशास्त्र यहाँ तक कि भूगोल आदि की वे मान्यताएँ भी जो स्त्री के शोषण की प्रकृति पर्यावरण दोहन के समकक्ष देखती हैं और बहुत कारगर ढंग से नए मूल्यांकन की अपेक्षा रखती हैं। चौथा, विज्ञान नृशास्त्र मनोविज्ञान संबंधी नए अन्वेषण जो तथ्य सामने रखते हैं उनसे स्त्री आंदोलन को बहुत बल मिलता है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा यहाँ समीचीन होगी। स्त्रियों की अपनी स्वतंत्र यौन इयत्ता है जो किसी कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स से पीड़ित नहीं है और यौन सुख के लिए पुरुषों की मुखापेक्षी भी नहीं। क्लाइटोरिस नामक इनका अंग विशेष बहुत सारे ऐसे स्नायु तंत्रों की सिद्ध पीठिका है जो इसे शिश्न से भी अधिक संवेदनशील और तृप्तिमुखी बनाता है। इसलिए यह मानना कि स्त्री सिर्फ पैसिव पार्टनर और लदा हुआ गर्भ है सिरे से गलत है। यौन सुख हो सत्ता सुख हो किसी नैतिक आध्यात्मिक तृप्ति का बिंदु हो स्त्रियों का पुरुषों पर अवलंबन बस उतना ही है जितना पुरुषों का स्त्रियों पर दोनों अलग अलग भी अपने आप में पूर्ण और आत्मनिर्भर हैं यह संभव नहीं। पूरा लेस्बियन कल्ट इसका ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी जरूरी होगा कि लेस्बियनिज्म अपने मूल अर्थ में दैहिक तादात्म्य से कहीं ऊपर की चीज़ है। एड्रिन रिच इसे लेस्बियन कॉन्टिन्यूम सखी भाव परिविस्तार के रूप में देखती हुई इसका संबंध विश्व भर की महिलाओं के अंतश्चेतनागत साचर्य से जोड़ती हैं और मानती है कि विश्व भर में उनकी समस्याएं प्रायः एक सी है। बलात्कार और अन्य तरह के यौन शोषण गृह कार्य आदि में पुरुषों की साझेदारी का अभाव कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में उत्कृष्ट क्रैश और डे केयर सेंटर आदि का अभाव पैतृक संपत्ति मैट्रिमोनियल संपत्ति अलिमनी आदि के संदर्भ में व्यावहारिक अड़चने विवाह विच्छेद के बाद चाहकर भी गोदी के बाहर के बच्चों को साथ न रख पाने की कानूनी व्यवस्था आदि। पुरुष का वाई फैक्टर उन्हें स्वभाव से उग्र दुर्दम्भ और विध्वंसक बनाता है। स्त्री में यह होता ही नहीं इसलिए भी वे शांतिप्रिय स्नेही कोमल और उच्च मानवीय गुण संपन्न होती है। ये उच्च मानवीय गुण पुरुषों में ज़्यादातर सतत प्रशिक्षण से पैदा होते हैं और नारी आंदोलन इस प्रशिक्षण में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि उत्तर संरचनावादी आलोचकों की तरह यह भी मानता है कि चेतना कोई ठोस या ठुस वस्तु नहीं, एक सतत प्रवाहमान इकाई है जहाँ अस्मिताएँ लगातार बदलती रह सकती हैं। इसलिए परकाया प्रवेश या दूसरे की दृष्टि से स्वयं को देखना और अपना दृष्टिकोण मार्जित करना असंभव नहीं। स्त्रीवादी समीक्षा पर यह आरोप बार बार लगाया जाता है कि यह अनुभव मूलक है प्रपत्ति मूलक नहीं, इसलिए न इसकी शोध प्रविधि तय है न शोध की दिशाएं। इसका उत्तर स्पष्ट है, प्रपत्तियां आकाश से नहीं टपकती, अनुभूतियां ही बीन फटक कर प्रपत्तियों के रूप में सजा ली जाती हैं। स्त्रीवादी समीक्षा का एक बड़ा अवदान यह है कि वैयक्तिक अनुभूतियों का सामाजिक संदर्भन इसने संभव बनाया और बताया कि जिसे स्त्रियां वैयक्तिक विफलता मानकर घुटती रहती थी उस असमंजन और असमंजस का मूल अर्थ पूर्वग्रहग्रस्त पितृसत्तात्मक समाज में है इसके शिकार पुरुष भी हैं, क्योंकि दरअसल यह स्त्री और पुरुष दोनों का सम्यक विकास अवरुद्ध करता है, दोनों का जीवन विषाक्त करता है, एक को भेड़ और दूसरे को भेड़िया बना डालता है, तो दोनों की मानवीय गरिमा से नीचे गिरते हैं। इसलिए आंदोलन मूलक शोध का नारा दिया गया और लिंग सचेतनता का विकास दोनों के लिए उतनी ही जरूरी समझी गई। इस संदर्भ में और भी जो बीज मान्यताएं उभरी उनकी सूची प्रस्तुत कर देना आवश्यक है। पहली बात की गई स्त्रीवादी अस्तित्व शास्त्र की, स्त्री के अनुभूति मंडल के आलोक में घटनाओं के विश्लेषण की, पुरुषों में स्त्री का नजरिया विकसित कर उसे अर्धनारीश्वर की गरिमा देना जरूरी है। सार्थक जीवन के लिए किसी भी व्यक्ति में वे सारे गुण समूह जिनका प्रतिनिधित्व स्त्रियों के सिर आता है उतने ही जरूरी हैं जितने वे गुण समूह जिनका प्रतिनिधित्व करते हुए पुरुष दिखाए जाते हैं। व्यक्तित्व के सम्यक विकास के लिए किसी को किसी पर तरजीह नहीं दी जा सकती। बीज रूप में ये सारे गुण स्त्री पुरुष दोनों में विद्यमान होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गणन कुछ ऐसे हैं कि पुरुषों में खास तरह के गुण और स्त्रियों में किसी और तरह के गुण आदर्श बताए जाते हैं। मर्दाना स्त्री और स्त्रैण पुरुष गालियों के रूप में विकसित कर ली गई अवधारणाएं हैं। किसी को भी यह सुनकर हंसी इसलिए आ जाती है क्योंकि अक्सर उग्र प्रतिक्रियावाद के दबाव में होता यह है कि स्त्रियां पुरुष सम्मत गुण विकसित करती करती स्त्री सम्मत गुणों को ताक पर रख देती हैं और पुरुष स्त्री सम्मत गुण विकसित करते करते पुरुष सम्मत गुणों को पिटार में बंद कर देते हैं। जरूरत तो दोनों तरह के मूल्यों की होती है। एक गुण समूह विकसित करने का अर्थ यह नहीं कि दूसरे को धता ही बता दिया जाए। सम्यक एड्रोजेनस व्यक्तित्व दोनों तरह के गुणों का सार ग्रहण करते हैं। अर्धनारीश्वर की भारतीय अवधारणा के पीछे भी यही मान्यता होगी। 1970 के बाद सेक्स और जेंडर के बीच का यह विवाद एक नई दिशा पा गया है। सेक्स जीव विज्ञान पोषित होता है, जेंडर सामाजिक ग्रहणत जब तक यह माना जाता रहा। सेक्स पोलराइजेशन दूर करने के एक उपाय के रूप में एंड्रोजेनी का यह सिद्धांत पल्लवित पुष्पित होता रहा, पर बाद में उसको चुनौती देने वाले कुछ वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आए जिन्होंने स्त्रियों की नैतिक विलक्षणता स्थापित की और उनके आलोक में एक नए लेस्बियन कल्ट की बात चलाई। यथास्थितिवाद से निपटने की खातिर अकादमिक विमर्शकर्ताओं और आंदोलनकर्ताओं के बीच की दूरी पाटनी होगी। विमर्शकर्ताओं को कार्यकर्ता भी होना होगा, कार्यकर्ता विमर्शकर्ता हो न हो, जब तक इंसाइडर के रूप में चीजें देखी सुनी परखी न जाए तब तक न आंदोलन प्रमाणिक होता है न विमर्श। समाजशास्त्रीय शोध प्रविधि में बहुलतावाद नाम का जो विकट अंतर आया है वह स्त्रीवादी विमर्शों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। फिनोमिनोलॉजिकल एथनोग्राफिक अंतर क्रियात्मक संघात अपने पूर्ण वैभव में तभी संभव है जब सभी शास्त्रों के पूर्वापर अनुभवों का लाभ उठाकर ही आगे बढ़े। किन्हीं चुने प्रतिनिधि महिला चरित्रों के विकास का हवाला देकर यह जताने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि स्त्रियां अब तो हाशिए पर नहीं रहीं। अगर गायत्री स्पिवाक कहती है कि अब सबाल्टर्न अपनी स्वतंत्र वाणी विकसित कर लेते हैं तब तो सबाल्टर्न रहते ही नहीं, तो उनके कहने का अभिप्राय यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि सबाल्टर्न का तो मुँह खोलना ही पर्याप्त होता है। उसने मुँह खोला नहीं कि किसी दैवी शक्ति से उसकी सारी समस्याएं धड़ाधड़ सुलझते जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मुँह खोलने और समस्याएं सुलझने की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बीच कितनी खाइयाँ होती हैं यह समझना कोई बहुत कठिन नहीं। फिर समस्याओं के निराकरण का कोई अंतिम बिंदु होता हो ऐसा भी नहीं है। समस्याएं रक्त बीज की तरह नए नए वेश में लगातार उठती निरस्त होती रहती हैं। उठने निरस्त होने की प्रक्रिया चूंकि अनंत है, यह एक ऐसी लड़ाई है जो शुरू तो होती है कभी खत्म नहीं होती। स्त्री समाज एक ऐसा समाज है जो वर्ग, नस्ल, राष्ट्र आदि संकुचित सीमाओं के पार जाता है और जहाँ कहीं दमन है, चाहे जिस वर्ग जिस नस्ल की स्त्री त्रस्त है वह उसे अपने परचम के नीचे लेता है। तकलीफें मिल बांटने का घरेलू तरीका अंतर्राष्ट्रीय चुनित पर ऐसा सफल होगा किसने सोचा था। एक दूसरे के जुए चुनती हुई, साथ कपड़े पछोड़ती हुई, धूप में झुंड बनाकर सिलाई बुनाई करती हुई औरतें एक दूसरे को जो दुख सुख सहज अकुंठ भाव से सुना लेती थी, वही औरतें अपनी तकलीफों का एलसीएम लघुत्तम निकाल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके निराकरण की मांग रख रही हैं। यह निश्चय ही एक बड़ी उपलब्धि है। कम से कम तीसरी दुनिया के देशों में मुख्य ध्येय निम्न वर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय स्त्रियां हैं। जिनकी वोट आदि के संदर्भ में भी निजी राय नहीं होती, और जिनके पातिव्रत्य की हजार मिसालों में एक मिसाल यह है कि वोट तक वे पति के निर्देशों के अनुसार ही डालती हैं, और आरक्षण आदि के प्रताप से यदि कहीं मुखिया या सरपंच चुनी भी गई तो उनके सारे निर्णय उनके पति परमेश्वर ही लेते हैं। स्त्री आंदोलन है तो एक पश्चिमी अवधारणा पर तीसरी दुनिया के भारत जैसे देश अपनी परंपरा और परिस्थितियों के आलोक में इसे वैसे ही अनुकूलित कर सकते हैं जैसे माओ ने मार्क्स को किया था। आश ग्रंथों के स्त्री विषयक अंतर्विरोध। चूंकि भारतीय सभ्यता प्राचीन और सर्व समावेशी है, कई रंग के पाठ इसमें अनुस्यूत हैं, स्त्री विषयक मान्यताएं भी अंतर्विरोधों से पटी पड़ी हैं। कहीं वह देवी है, कहीं दासी, कहीं सर्वशुक्ला प्रेरणा, कहीं महाठगनी माया। इस संदर्भ में इसके पहले की अपनी ओर से कोई टिप्पणी करूं, भारत के विभिन्न आश ग्रंथों से कुछ श्लोक उद्धृत करना चाहूंगी जो देवी पूजा की इस प्राचीन संस्कृति में स्त्री विषयक मान्यताओं पर खुद एक सपाट टिप्पणी है। युवाम हम घोषा पर्यश्विना यतोराग्य ऊचे दुहिता पुच्छे वानरा भूतम मे अहन उत भूत मक्तवे श्यावते रथिने शक्त मर्वते। महराज कन्या घोषा सर्वत्र वेद की घोषणा करने वाली, वेद का संदेश सर्वत्र पहुंचाने वाली स्तुति पाठिका हूँ। हे देव, मैं सर्वत्र आपका ही यशोगान करती हूँ और विद्वानों से आपकी चर्चा करती हूँ। आप सदा मेरे पास रहकर मेरे इन इंद्रिय रूपी अश्वों से युक्त शरीर रूपी रथ के साथ मेरे मन रूपी अश्व का दमन करें। यहाँ शरीर, मन और इंद्रियों के जैसे दमन की बात की गई है, उसे फ्राइडिन दमन की भाषा में अनुदित करें तो रिप्रेशन न कहलाकर वह सब्लिमेशन कहलाएगा, जो सिर्फ एक उस कोटि के प्राणियों में संभव होता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से विशिष्ट या सृजनशील हो। इस आत्मानुशासन की अपेक्षा यहाँ स्त्री को स्वयं से है। वह परिष्कृत मनीषावली समधीत स्त्रियों की एक पूरी परंपरा की ओर हमारा ध्यान खींचती है, जो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी और इस निश्चिंतता से शास्त्रार्थ करती हुई दिग्भ्रमण करती थी जैसे आज की विदुषियाँ। युवा मृगेव वर्णा मृगण्यौवो दोषावस्तु हर्विषा निशम वयामहे युवम होत्रा तथा जुहुते नरेशम जनाय बहवम शुभस्तई। हे नायक, अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार शिकारी बड़े बड़े सिंहों का मृगया में पता लगाते हैं, वैसे ही हम ब्रह्मचारिणी कन्याएं भी रात दिन प्रेम पूरित हविष्य द्वारा आपका आह्वान करती हैं। किंतु ये ब्रह्मचारिणी कन्याएं जीवन के भौतिक सुखों के संधान में एकदम विरत रखी गई हों ऐसा भी नहीं है। अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करती हुई घोषा कहती है, जीवम उदंतीवी मन्नते अध्वरे दीर्घमनुप्रसीति दिधियूनरः वामं पितृभ्यो यदम समेरिमेह पतिभ्यो जनय परिश्रजे। जब भी कोई ब्रह्मचारी नारी लक्षणों से संपन्न होकर कमनीय वर की इच्छा करे, उसे उसकी मनोदशा के अनुकूल वर मिले, पति के घर वधु को जीवन के सभी साधन सुलभ रहें और सदा उसके में दया, परोपकार, उदारता और शालीनता आदि गुण नदी के प्रवाह की तरह गतिशील बने रहें। यहाँ रोचक बात यह है कि अनुकूल माहौल जुटाने की अपेक्षा स्त्री सिर्फ वर से नहीं पूरे घर से की गई है, अपेक्षा पूरे घर से की गई है। घर के एक एक व्यक्ति, एक एक जीव से यह उम्मीद की गई है कि वह स्त्री को विकास का अनुकूल परिवेश दे। यहीं पर विकसित होकर समाज बनता है जिसके बारे में स्त्री आश्वस्त है कि वह भी उसका हित संवर्धन ही करेगा। इस बात के प्रमाण के रूप में ऋक संहिता के दशम मंडल के 109वें सूत्र में आई जुहू की कथा उद्धृत की जाती है। बृहस्पति ने जब प्रमाद पूर्वक अपनी प्रमदा जुहू का परित्याग कर दिया तो वह जरा भी विचलित हुए बिना निर्णायक मंडल के पास गई। निर्णायकों के आदेश से पत्नी का त्याग का प्रायश्चित कर बृहस्पति फिर से गृहस्थ में दाखिल हुए। पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। इसका संकेत सूर्या सूक्त की 33वीं ऋचा में है, जहाँ पर वर स्वयं अपनी पत्नी को देखना का आग्रह और लोगों से करता है। सुमद डिलीरियम वधूमिराम समेत पश्यत। सास ससुर के साथ बहुएं खाती पीती थी, इसका प्रमाण 28वें सूक्त में है। विश्व हन्यो अरिराज गाम ममे द्याह ससुरो नाज गाम। सब देवता मेरे यज्ञ में आए हैं किंतु अभी तक मेरे ससुर इंद्र नहीं आए, यदि आ जाते तो भुने जव के साथ वे भी सोमपान करते। ऐसे अनुकूल परिवेश का ही प्रभाव था कि वाणाभृंगी आदि तेजस्वी स्त्रियों का आत्मविश्वास इतना प्रखर हुआ कि वे कह गईं, अहमेव वातैव प्रवाभ्यम भमाणाम भुवनामि विश्वापरो परो दिवापर एना पृथिव्यै तावनी भुवनानि विश्वापरो। परो दिवापर एन पृथिव्यै तावनी महिना स बभूव। हे विज्ञ, मैं जो कहती हूँ वह पूर्ण यथार्थ है। मुझे न मानने वाले क्षीणता को प्राप्त होते हैं। मैं देवताओं और मनुष्यों के परम पुरुषार्थ की उपदेशिका हूँ। मेरी कृपा से ही लोग बलवान, मेधावी, श्रोता और कवि बनते हैं। अहमेव स्वयमिदं वदामि जिष्ठं देवी भिवृतं मनुष्येभिः, यं कामये तन् तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तमृणीं तं सुमेधाम। इसके बाद वह कहती हैं, मैं जब सृजन कार्य करती हूँ तो मेरी गति वायु के समान होती है। मैं अपने महत्वपूर्ण कार्यों में महिमामयी होकर आकाश और पृथ्वी की सीमाओं को भी लांघ चुकी हूँ। इस प्रकार की सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी यत्ता स्थापित करने के लिए स्त्रियाँ कभी कभी राजनीति भी करती थीं, जहाँ बृहत्तर उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें मोह, माया, ममता आदि स्त्री संबंध भावनाओं का परिलंघन भी साधक भाव से करना पड़ता था। इसका भाषण उदाहरण है शर्मा, जो ऋग्वेद के दशम मंडल के 108वें सूक्त की ऋषिका मानी गई है। पणियों ने आर्यों का गोधन चुरा कर किसी अज्ञात स्थान पर रख दिया है। इंद्र की संदेशवाहिका होकर शर्मा पणियों के पास पहुंचती हैं तो वे उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, गोधन का हिस्सा देने का लालच भी, और वह अपने व्रत पर दृढ़ रहती है। अंत में नवम मंत्र में वे उसे अपनी बहन बनाने का प्रस्ताव भी रखते हैं, जिसे वह दशम मंत्र में साफ ठुकरा देती है। इसी प्रकार की हृदय विदीर्ण करने वाली बात उर्वशी पुरुर्वा से कहती है। पुस्तक में वह कहती है कि स्त्री का हृदय भेड़िए के समान होता है, वह कोई संबंध नहीं जानती। पुस्तक में पर इस कटोक्ति का भी मंतव्य ऊंचा है। विरह विदग्ध पुरुर्वा के मन में वैराग्य उत्पन्न करना, जिससे उसका जीवन जीने लायक हो जाए। इस प्रकार वैयक्तिक संबंधों के ऊपर सामाजिक उद्देश्यों को प्रतिष्ठित करने वाले स्त्रियों की भी एक पूरी परंपरा है। बहुत सी मंत्र दृष्टाएं स्त्रियां रही हैं, जिनके कुछ मंत्र तो ऐसी सम्यक सामाजिक दृष्टि से महमा है कि उन्हें पूरा उद्धृत करना समीचीन होगा। हे भगवान, हमारे ब्राह्मण ब्रह्मतेज से युक्त हों, क्षत्रिय शास्त्रार्थ में निपुण हो, वैश्य का व्यापार सुचारू रूप से चले, गायें दूध देने वाली, अश्व द्रुतगामी, योद्धा जयशील, युवक युवतियाँ निर्भीक हों, मेघ समय पर बरसे, औषधियाँ स्वास्थ्यवर्धक हों, और संपूर्ण देशवासियों का योगक्षेम हो और संपूर्ण देशवासियों का योगक्षेम चलता रहे। संस्कारों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि सती प्रथा तो अस्तित्व में नहीं ही था, विधवा विवाह का भी प्रावधान था। अथर्ववेद संहिता में तो एक पूरा खंड ही इस विषय पर प्रकाश डालता है। मृत व्यक्ति की पत्नी शोकाभिभूत सी चिता पर जा लेटी थी भी थी तो बाद में अन्य संबंधियों द्वारा उसे वहां से हटा दिया जाता था। इतना ही नहीं, इसके बाद उसका पुनर्विवाह भी हो जाता था, जैसा कि अथर्ववेद संहिता से स्पष्ट है। मृतक पति के साथ चिता में लेटी स्त्री को देखने के बाद मैंने उसे वहां से हटाया, जो शोक रूपी घना अंधकार से आवृत थी। पूर्व पति की चिता से उठकर जो भी पुरुष स्त्री को ले जाता था और तोष भरोस देने में सक्षम होता था, उससे उसका विवाह वैध माने जाने के भी संकेत है। ऋग्वेद संहिता में राजा वेन का उल्लेख है, जिसे पृथ्वी या पुतु भी कहा गया है। यह वह वेन राजा है जिसके बारे में मनु ने स्पष्ट लिखा है कि उसने विधवाओं को पुनर्विवाह जबरदस्ती कराया था। ऋग्वेद संहिता में एक विधवा स्त्री को संबोधित करते हुए कहा गया है कि तुम मृत पति को छोड़कर भावी पति को प्राप्त करो। महर्षि याश्क ने निरुक्त में देवर शब्द का अर्थ द्वितीय वर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रथम पति के कालग्रस्त हो जाने पर द्वितीय विवाह की प्रथा थी। विधवेव देवरम देवर तस्मा द्वितीयो वर उच्यते। पर वैधव्य की कठिनाइयों और असुविधाओं की वो जो संकेत आर्ष ग्रंथों में मिलते हैं, उनके प्रति भी सजग रहना आवश्यक है। ऋग्वेद में बहुत ही काव्यात्मक ढंग से विधवाओं का साम्य कांपती हुई पृथ्वी के साथ स्थापित किया गया है। बाल विवाह का प्रचलन तो नहीं था, पर जिन आर्तर के विवाहों का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है, उनमें अंतिम तीन विवाह स्त्रियों की दुर्दशा के ही द्योतक हैं। पहला, ब्राह्मण विवाह में वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित कन्या का विवाह वैदिक रीति से सुयोग्य वर के साथ रचाया जाता था। दूसरा, दैव विवाह में कन्या पृथ्वी को उपहार स्वरूप दी जाती थी। तीसरा, आर्ष विवाह में वर पक्ष से दो गायें लेकर कन्या का पिता कन्यादान करता था। चौथा, तुम दोनों मिलकर गृहस्थ आश्रम का पालन करो। बस यह इस संबोधन के साथ वरवधु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे तो यह प्रजापत्य विवाह कहलाता था। पांचवा, गांधर्व विवाह में स्त्री पुरुष की आपसी सहमति विवाह की इकलौती शर्त मानी गई थी। वैयक्तिक निर्णय को सामाजिक गरिमा देती यह व्यवस्था शकुंतला, दुष्यंत, नल, दमयंती आदि कई बड़ी प्रेम कहानियों का आश्रय तो बनी ही, स्वयंवर की परवर्ती परंपरा का आधार स्तंभ भी बनी। छठा, असुर विवाह में वर पक्ष से धन लेकर कन्या उसे दी जाती थी। यह विक्रय जैसी व्यवस्था सचमुच आसुरी रही होगी, पर आर्ष विवाह कराने वाली व्यवस्था ही कौन बहुत अच्छी थी, जहां दो गायें मिलकर एक कन्या के मान की बराबरी कर लेती थी। सातवां, राक्षस विवाह में कन्या ग्रहण के लिए युद्ध, हत्या, घात, प्रतिघात सब होता था, जिसमें बेचारी कन्या की मानसिक शांति तो जाती ही होगी, जो बेचारा उसे पाने के उपक्रम में मर जाता होगा उसके लिए उसका मन भारी भी रहता होगा। आठवां, पैशाच विवाह में नशे, निद्रा या रोग की स्थिति में कन्या का बलात्कार कर लेने के बाद विवाह का प्रस्ताव किया जाता था। जिसने विवाह के पहले से ही त्रास देना शुरू कर दिया हो, मृत्यु पर उसे नियंत्रण ही न हो, उस पुरुष के साथ विवाह कैसा होता होगा यह भी सोचने की बात है। अंतिम तीनों प्रकार के विवाह तो स्त्री के लिए त्रासद ही होते होंगे, फिर भी स्त्रियां उसके लिए प्रस्तुत हो जाती थी, तभी तो ये परंपरा में आए। कैसी वे व्यवस्थाएं होती होंगी जिनमें स्त्रियों को यह विवाह मान्य होते होंगे, यह भी विचारणीय है। वर चयन के संदर्भ में स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित क्यों थी, यह एक बड़ा प्रश्न है। विवाह के साथ इतने भौतिक, अधिभौतिक प्रयोजन जुड़े हुए माने गए हैं। पति पत्नी के सम्मिलित दायित्व इस लोक और उस लोक में दोनों में इतने संघनित कहे गए हैं, फिर भी वर वधु का मानसिक नैतिक स्तर पर एक रहे, इस पर अधिक जोर नहीं दिया गया। असुर, राक्षस और पैशाच विवाह घटित होते रहे और आज तक किसी न किसी रूप में घटित हो ही रहे हैं, और उन विवाहों से मुक्ति भी आसान नहीं। यह भारतीय जनजीवन की बड़ी विडंबना रही है।